पूर्व पाठ में मैंने कहा था कि अब बुद्धि के बारे में निरूपण होगा, लेकिन उससे पहले एक दो पंक्तियों में इन्होंने विचार प्रस्तुत किया है, थोड़ा सा अलग हट करके विचार है केशव मिश्र जी का। इसमें ये है कि सात पदार्थों का निरूपण तो पहले संपन्न हुआ, अब इसमें कतिपय जो दार्शनिक हैं, खास करके बौद्ध दर्शन वाले और शांकर वेदांत वाले, इन लोगों ने पदार्थ की बाह्य सत्ता को स्वीकार नहीं किया। इनका मानना है कि पदार्थ की सत्ता जो है, वह बौद्ध दर्शन वालों का मानना है कि पदार्थ की सत्ता जो है यह आंतरिक सत्ता है, अंदर में ही पदार्थ का अस्तित्व होता है, बाहर में पदार्थ का कोई अस्तित्व नहीं होता, और वह बुद्धि में जो रहने वाली पदार्थ की सत्ता है, वही सत्ता जो है ना बाहर में व्यक्ति को महसूस होती है, इस तरह का कहना है बौद्ध दार्शनिकों का। और आपने भी अनुभव किया होगा कि जैसे हम जब स्वप्न देखते हैं उसमें नाना प्रकार के पदार्थों को देखते हैं, उस समय में आँखें बंद रहती हैं, कान बंद रहते हैं, सारी इंद्रियां बंद रहती हैं, तो हम उन पदार्थों को जो देखते हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष की तरह देखते हैं। कैसे देखते हैं? इसका मतलब है कि आंतरिक सत्ता जो है सारे पदार्थों की होती है, और इस कारण से स्वप्न में हम उन पदार्थों को बिल्कुल उसी तरह देखते हैं जैसे कि आँख खोल करके वस्तुएँ दिखाई देती हैं। तो आंतरिक सत्ता होती तो है पदार्थों की, तो बौद्ध दार्शनिकों का मानना है कि वही जो आंतरिक सत्ता है पदार्थ की सत्ता, वही बाहर में प्रतिभाषित होती है, बाहर में दिखाई देती है। शांकर वेदांत वाले जो हैं, उनका तो आपने भी सुना होगा, आप जानते भी होंगे कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, उनका कहना है कि केवल ब्रह्म ही सत्य है और सारा जगत जो है वह मिथ्या है। तो सारा जगत जब मिथ्या हो, मिथ्या है, इसका मतलब है कि बाह्य पदार्थ जो हैं, बाहरी पदार्थ जो हैं, वो तो मिथ्या है ही, तो इनके मत में तो बाहरी पदार्थ और आंतरिक पदार्थ दोनों ही मिथ्या है, दोनों ही बेकार है, दोनों का ही अस्तित्व नहीं होता। तो इस तरह से बौद्ध दार्शनिकों ने जो है ना ज्ञान से अलग ये पदार्थ की सत्ता नहीं मानी है, कहा कि ज्ञान की ही सत्ता होती है और उसी में सारे पदार्थ होते हैं, ज्ञान से अलग जो है कोई सत्ता नहीं होती, और ज्ञान कहाँ होता है, वह आंतरिक होता है, अंदर में होता है, तो ज्ञान से अतिरिक्त पदार्थ की सत्ता नहीं होती, ये बौद्ध दार्शनिकों का मानना है। और शांकर वेदांतियों का मानना है कि ब्रह्म के अतिरिक्त पदार्थ की कोई सत्ता नहीं होती, सत्ता केवल ब्रह्म की होती है। ये जो दो मत हैं, इन दोनों मतों को लेकर के केशव मिश्र जी यहाँ लिखते हैं कि ननु ज्ञानाद ब्रह्मणो वा अर्था व्यतिरिक्ता न संति। ये जो मत है कि ज्ञानात मन ज्ञान से अतिरिक्त और ब्रह्मण और ब्रह्म से अतिरिक्त पदार्थ की सत्ता नहीं होती, माने पदार्थ की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती, ब्रह्म में ही निहित है और ज्ञान में ही निहित है, ये जो कहा गया है उसके लिए कहते हैं कि माँ एवं मई वम, यह सही नहीं है। क्यों नहीं सही है? क्योंकि अर्थानाम अपि प्रत्यक्षादि सिद्धत्व न, ये जो पदार्थ का जो प्रत्यक्ष होता है, पदार्थ का जो हम लोग अनुभव करते हैं, वह प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है, और जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा जो सिद्ध वस्तु है, बाह्य सत्ता जो सिद्ध है, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता, उसको जो है ना हम अस्वीकार नहीं कर सकते जो कि प्रमाण के द्वारा सिद्ध है। तो इस तरह से जो बौद्ध दार्शनिक मानते हैं कि ज्ञान के अतिरिक्त पदार्थ की सत्ता नहीं है, और जो शांकर वेदांती मानते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त पदार्थ की सत्ता नहीं है, वो सही नहीं है, क्योंकि बाह्य पदार्थ की बाह्य सत्ता जो है वह तो प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है, प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है, और जो प्रत्यक्षादि प्रमाणों के द्वारा सिद्ध है बात, उस बात का अपलाप नहीं हो सकता, उसका तिरस्कार नहीं हो सकता, अपलाप मतलब तिरस्कार। इस तरह से एक लाइन में ही जो है इन्होंने सांकर वेदांती की बात को और बौद्ध दार्शनिक की बात को अस्वीकृत कर दिया। अब इसके बाद बुद्धि का निरूपण होगा। इसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हैं आप पहले पढ़ चुके हैं। मैंने कहा था कि अब उत्तरार्ध पाठ का चल रहा है, तो इसमें बहुत सारी बातें रिपीट होनी हैं। ये केवल इसलिए होती हैं कि आपका संस्कार जो है इन चीज़ों के लिए दृढ़ हो। तो चलिए, ये बुद्धि के लिए तीन पर्यायवाची शब्द का यहाँ पर इन्होंने उल्लेख किया, तीन नहीं चार का, बुद्धि को लगा करके चार। कहते हैं कि बुद्धि ही उपलब्धि ही ज्ञानम प्रत्यय इत्यादि भी ही पर्याय शब्देह अभिधीयते सा बुद्धि। कहा कि बुद्धि शब्द से, उपलब्धि शब्द से, ज्ञान शब्द से और प्रत्यय शब्द से, इन चारों शब्दों से में से किसी भी शब्द से जिसका अभिधान होता हो, अभिधान होता हो माने कथन होता हो, उसे हम बुद्धि कहते हैं। एक दूसरा भी लक्षण दिया कि अर्थ प्रकाशो बा बुद्धि ही, माने अर्थ विषयक जो प्रकाश है उस प्रकाश का नाम भी बुद्धि है। आपने एक श्लोक सुना होगा, अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। इसमें अज्ञान को जो है क्या कहा गया है, तिमिर कहा गया है, अंधकार कहा गया है। तो अज्ञान को अगर अंधकार कहा जाएगा तो आप समझ लीजिए ज्ञान को क्या कहा जाएगा, प्रकाश कहा जाएगा ना, क्योंकि ज्ञान रूपी प्रकाश के सामने अज्ञान रूपी अंधकार जो है वह ठहरता नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे ज्योति के सामने अंधेरा नहीं ठहरता। तो यहाँ जो बुद्धि का लक्षण बताया, अर्थ प्रकाशो वा बुद्धि, माने अर्थ विषयक जो प्रकाश है उस प्रकाश को हम बुद्धि कहते हैं। फिर कहते हैं साच संक्षेप तो द्विविधा, यह जो बुद्धि है वह संक्षेप रूप से अगर कहें, संक्षिप्त रूप से कहें तो दो प्रकार की होती है, एक अनुभवात्मक बुद्धि और एक स्मरणात्मक बुद्धि। इन दोनों में अंतर आप समझते हैं होंगे, जो हम इंद्रियों के द्वारा तत्काल अनुभव करते हैं वह है अनुभवात्मक बुद्धि, और जो पहले की बुद्धि है उसको हम स्मरण करते हैं, पहले की बात को स्मरण करते हैं, वह है स्मरणात्मक बुद्धि। तो अनुभव और स्मरण के रूप में बुद्धि के दो भेद हैं। अनुभवोपि द्विविधा, अनुभव भी जो है वह दो प्रकार का होता है, एक होता है यथार्थ और एक होता है अयथार्थ। ये सारे शब्द आपके परिचित हैं, आप जानते हैं, जो जैसा है वैसा ही अनुभव हो तो यथार्थ अनुभव हुआ, और जो जैसा नहीं है वैसा अनुभव होता है तो वह अयथार्थ अनुभव हुआ। आगे स्वयं कहते हैं कि तत्र यथार्थ अर्थ अविसंवादी, उसमें यथार्थ अनुभव वह होता है जो जैसा है वैसा ही अगर अनुभव हो तो वह उसको हम यथार्थ अनुभव कहते हैं। इसी को कहा इन्होंने अर्थ अविसंवादी, जो भी अर्थ है पदार्थ है उससे अविसंवादी, माने विसंवाद करने वाला न हो, माने उसका विरोधी न हो। तो जैसा पदार्थ है वैसा ही अगर अनुभव हुआ तो वह हुआ यथार्थ अनुभव, क्योंकि वही जो है अर्थ का अविसंवादी है। विसंवादी कहते हैं विपरीत स्वरूप वाले को, तो पदार्थ के विपरीत स्वरूप का जहाँ अनुभव न हो, अर्थात पदार्थ के यथावत स्वरूप का अनुभव हो, वह हो गया यथार्थ अनुभव। स्वच प्रत्यक्षादि प्रमाण ही जन्यते, और यह जो यथार्थ अनुभव है उसका जन्म कैसे होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो प्रत्यक्षादि प्रमाण यह, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से उसकी उत्पत्ति होती है। यथा चक्षुरादि भी ही अदुष्ट घटादि ज्ञानम, जैसे चक्षु आदि इंद्रिय जो है वह इंद्रियां अगर अदुष्ट हैं माने दोष से रहित हैं। आप जानते ही हैं कि इंद्रिय में अगर खराबी हो, आँख में अगर खराबी हो, अंधा व्यक्ति जो है ना उसको दिखाई नहीं देता, जबकि क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसका जो चक्षुरिंद्रिय है वह दुष्ट है, दुष्ट है माने दोष से युक्त है। तो अदुष्ट जो चक्षु आदि इंद्रिय है उससे जो है ना घटादि का ज्ञान जो होता है, या घटादि का ज्ञान कैसे उत्पन्न होता है, तो तो प्रत्यक्ष आदि प्रमाण के द्वारा मैंने चक्षु आदि इंद्रिय वहाँ पर प्रमाण की भूमिका में है और उस प्रमाण के द्वारा घटादि ज्ञान की उत्पत्ति होती है। इसी तरह से जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान का बताया, फिर आगे अनुमान के लिए कहते हैं धूम लिंगकम अग्नि ज्ञानम। धूम लिंग के द्वारा, लिंग मतलब हेतु, धूम हेतु के द्वारा जो अग्नि का ज्ञान होता है, या भी या किस प्रमाण से इस ज्ञान का की उत्पत्ति होती है, अनुमान प्रमाण से उत्पत्ति होती है। क्योंकि पहले कहा ना कि स्वच प्रत्यक्षादि प्रमाण ही जन्यते, माने यथार्थ अनुभव जो है वह प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से जन्म लेता है। तो क्रम के उदाहरण दे रहे हैं, प्रत्यक्ष का घटादि ज्ञान का, घटादि ज्ञान जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसमें चक्षुरादि कारण होता है, अग्नि ज्ञान जो है अनुमिति रूप, उसमें धूम लिंग जो है वह कारण होता है। फिर गो सादृश्य दर्शनात्, गो के सादृश्य के दर्शन होने पर, सादृश्य मन समानता, गो की समानता के दर्शन के बाद गवय शब्द वाच्यता ज्ञानम, यह जो है गवय शब्द का वाच्य है ऐसा जो ज्ञान होता है यह उपमान प्रमाण के द्वारा होता है। और ज्योतिष्टोमेन स्वर्ग कामो यजेता, माने ज्योतिष्टोम नाम का यज्ञ जो है वह स्वर्ग की कामना से करना चाहिए, यह वेद वाक्य है। इत्यादि वाक्यात, इत्यादि वेद वाक्यों से ज्योतिष्टोमस्य स्वर्ग साधनता ज्ञानम, ज्योतिष्टोम यज्ञ में जो स्वर्ग की साधनता का ज्ञान होता है, माने ज्योतिष्टोम यज्ञ करने का, जो ज्योतिष्टोम यज्ञ जो है वह साधन है और साध्य क्या है, स्वर्ग है, इस तरह का जो ज्ञान होता है यह शब्द प्रमाण के द्वारा होता है। इस तरह से यथार्थ अनुभव जो है प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और शब्द प्रमाणों के द्वारा उत्पन्न होता है, और वह यथार्थ अनुभव प्रत्यक्ष रूप, अनुमिति रूप, उपमिति रूप और शब्द बोध रूप होता है। आगे कहते हैं कि अयथार्थस्तु अर्थव्यभिचारी, और अयथार्थ अनुभव जो है वह अर्थ का व्यभिचारी होता है। व्यभिचारी का अर्थ यहाँ पर विपरीत कर लीजिए, जो जैसा पदार्थ है, जैसी वस्तु है, उसके विपरीत जो अनुभव होता है वही है अर्थ व्यभिचारी अनुभव, उसी का नाम है अयथार्थ अनुभव। आगे कहते हैं अप्रमाणज, और यह जो है अयथार्थ अनुभव ये अप्रमाणज है, माने इसकी उत्पत्ति प्रमाण से नहीं होती है। स्वच त्रिविधा, और यह अयथार्थ अनुभव तीन प्रकार का होता है, कौन कौन, तो संशय, तर्क और विपर्यय। संशय नाम का अयथार्थ अनुभव जिसको आप संदेह कहते हैं, फिर तर्क नाम का अयथार्थ अनुभव और विपर्यय नाम का अयथार्थ अनुभव। इनमें संशय और तर्क ये जो दो शब्द हैं इनको बक्ष्येते, बक्ष्येते माने भविष्य में जो है ना इसके बारे में बताया जाएगा, मतलब तत्काल नहीं बता रहे हैं, बाद में बताएंगे। तत्काल किसको बता रहे हैं, तो विपर्यय को बता रहे हैं। कहते हैं कि विपर्ययस्तु अतस्मिन तदग्रह भ्रम इति यावत, ताकि विपर्यय जो है ना हम किसको कहते हैं, तो भ्रम का नाम है विपर्यय। और भ्रम क्या होता है, तो अतस्मिन तदग्रह, अतस्मिन जो वैसा नहीं है और उसमें वैसा जो ग्रह होता है, ग्रह मतलब ज्ञान होता है, उसी का नाम है विपर्यय, या उसी को हम भ्रम कहते हैं। अतस्मिन तदग्रह भ्रम, जहाँ जिस वस्तु का अभाव होता है वहाँ यदि उस वस्तु का अनुभव हो तो उस अनुभव का नाम होगा विपर्यय। यही है विपर्ययस्तु अकस्मिन तद्ग्रह भ्रम। जैसे उदाहरण दिया यथा पुरोवर्तिनी अरजते, पुरोवर्तिनी, पुरोवर्ती करते हैं सामने में जो स्थित है उसको पुरोवर्ती कहेंगे, आगे में जो विद्यमान है। तो पुरोवर्ती जो अरजत है, रजत माने चांदी और अरजत माने रजत से भिन्न, जैसे सुक्ति है, सीपी जिसको हिंदी में कहते हैं, तो पुरोवर्ती जो अरजत सुक्ति आदि है, माने रजत भिन्न जो सुक्ति आदि है, सीपी आदि है, उसमें जो रजतारोप होता है, माने रजत की जो बुद्धि होती है, आरोप का अर्थ यहाँ बुद्धि करिए, तो रजत की जो बुद्धि होती है उसमें किस तरह की बुद्धि होती है सुक्ति में, रजत की बुद्धि, तो इदम रजतम इति, माने यह जो है यह रजत है, इस तरह की जो बुद्धि होती है यह क्या है, अतस्मिन तद्ग्रह है, माने ये जो है सुक्ति ये तो रजत है नहीं, लेकिन सुक्ति में ही अतस्मिन माने रजत भिन्न सुक्ति में तद्ग्रह होता है, माने रजत का ग्रह होता है इदम रजतम, तो इस तरह से यही इदम रजतम इस तरह सुक्ति आदि में जो इदम रजतम इस तरह का जो अनुभव होता है उसी अनुभव का नाम है विपर्यय, या उसी को हम कहते हैं भ्रम। तो इस प्रकार से विपर्यय के बारे में यहाँ पर बताया गया। फिर इसके आगे जो है ना स्मरण के बारे में कहते हैं कि स्मरणम अपि यथार्थम अयथार्थम चेति द्विविधम, कहा कि जैसे अनुभव दो प्रकार का होता है यथार्थ अयथार्थ, उसी तरह से स्मरण भी दो प्रकार का होता है यथार्थ अयथार्थ। तदुभयम जागरे और जागरे, जागरे माने जागृत अवस्था में ये दोनों ही अनुभव होते हैं, यथार्थ दोनों स्मरण होते हैं, यथार्थ स्मरण भी और अयथार्थ स्मरण भी। स्वप्ने तु सर्वमेव ज्ञानम स्मरणम अयथार्थम, और स्वप्न में जो ज्ञान होता है जो स्मरणात्मक ज्ञान होता है वह सब का सब जो है अयथार्थ ही होता है। दोष वशेन तत् तदिति स्थान इदम इत्युदयात, क्योंकि उसमें कई दोष होते हैं माने कई कारण होते हैं, उन कारणों से स्मरण स्वप्न में ये ज्ञान होता है कि यह वही स्थान है या वही स्थान है या यह वही वस्तु है, या दोष के बसते होता है, वास्तविकता उसमें नहीं होती, इसलिए ये जो है ना ये अयथार्थ स्मरण के अंतर्गत आता है। और अयथार्थ स्मरण जो है ये कब कब होता है तो स्वप्न में होता है, और जागरण अवस्था में दोनों ही टाइप के स्मरण होते हैं, यथार्थ स्मरण भी होता है और अयथार्थ स्मरण भी होता है। ऐसे शास्त्र में इस पर बहुत ही व्यापक विचार किया गया है कि किन कारणों से जो है ये स्मरण ये स्वप्न जो आता है किन कारणों से आता है, उसका क्या परिणाम होता है, उसका क्या फल होता है, लेकिन वो सारे विचार जो हैं यहाँ पर नहीं बताए गए, यहाँ पर केवल भेद बताया गया और ये कब होता है, स्वप्न सुसुप्ति अवस्था में होता है या जागरण अवस्था में होता है, इतना ही केवल बता करके इन्होंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया। तो ठीक है, आज का पाठ यहीं पर रखते हैं, फिर आगे पढ़ेंगे।